लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर कलीसिया में लोकधर्मी विश्वासियों के मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि बपतिस्मा संस्कार से पोषित होकर लोकधर्मी विश्वासी, विशेष रूप से महिलाएं, कलीसिया के अंतर्गत जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकाधिक भाग ले सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की जीवनी और छोटानागपुर मिशन पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, इन दिनों हम छोटानागपुर के प्रेरित फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स की जीवनी एवं मिशन पर प्रकाश डाल रहे हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम से छोटानागपुर में ख्रिस्त की ज्योति जलाई और यहाँ के पीड़ित एवं उपेक्षित लोगों को जीने का रास्ता दिखलाया। साथ ही समाज में न्याय, समानता एवं मानव प्रतिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी अपनी दयनीय स्थिति से ऊपर उठ पाए। फादर लेबन्स के इस विरासत को हमारे समाज में बनाए रखना आज भी अत्यंत लाभदायक होगा। पिछले कार्यक्रम में हमने फादर लेबन्स का उरांव लोगों से मुलाकात करने के बारे सुना था। तोरपा में मुंडा लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने के बाद उन्होंने उरांव लोगों के बीच ख्रिस्त का प्रचार किया। पूरन प्रसाद के नेतृत्व में उरांव, जिन्होंने प्रोटेस्टेंट कलीसिया से अपने को दूर कर लिया था और खुद को देशी ख्रिस्ते कहते थे, फादर लेबन से आग्रह किया कि उन्हें कैथोलिक समुदाय में शामिल किया जाए, जिसके लिए फादर लेबन्स ने 3 जून 1888 को एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कैथोलिक समुदाय में प्रवेश करने की सामान्य शर्तों के बारे बतलाया। शर्तें थी कि राज प्राप्त करने के लिए विद्रोही प्रयासों को छोड़ देना, कानूनी सीमा के भीतर ही जमींदारों की सेवा करना और लगान देना। उरांव ने शर्त मंजूर कर लिया। सभा में प्रार्थनालय, स्कूल और मिशनरी आवास के निर्माण पर भी विचार विमर्श किया गया और पूरन प्रसाद ने धर्म में प्रवेश करने के लिए लोगों की मदद करते रहने का वचन दिया। इन सब के बावजूद फादर लेबन्स ने उन्हें कैथोलिक समुदाय में ग्रहण करने में हड़बड़ी नहीं की। वे खुद देखना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने नेताओं के साथ उनके गांव का दौरा करने का आयोजन किया। दिग्या के फादर हेगनबेक के साथ फादर लेबन्स ने उरांव गांव का दौरा शुरू किया। 7 जून की शाम वे पूरन प्रसाद के गांव रघुनाथपुर पहुंचे, जो दिघिया से 12 मील की दूरी पर थी। पूरन प्रसाद के घर में वे खाट पर बैठकर मोमबत्ती के प्रकाश में शाम का भोजन किए। इस दौरान गांव के लोग उन्हें देखने आए। फादर लेबन्स लोगों के साथ बातें करने लगे। उन्होंने लोगों से अनगिनत सवाल किए और उन्हें हंसाया भी। रात को वे पुआल के ढेर में अपने बाइक को तकिया बनाकर आराम से सो गए। दूसरे दिन मिस्सा के बाद रघुनाथपुर के परिवारों को कैथोलिक समुदाय में स्वीकार करने की विधि संपन्न की। चूंकि वे पहले ही प्रोटेस्टेंट कलीसिया में धर्म शिक्षा और बपतिस्मा प्राप्त कर चुके थे, उनसे पूछा गया कि क्या वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से कैथोलिक कलीसिया में प्रवेश करना चाहते हैं। रघुनाथपुर के बाद उसी दिन गानापुर, पोल्टी, पकाना और तांजर में भी ख्रिस्तियों को कैथोलिक समुदाय में स्वीकार किया गया। दूसरे दिन फादर हेगनबेक दिघिया लौटे, जबकि फादर लेबन्स पूरन प्रसाद के साथ गांव का दौरा करते रहे। दोनों ने 8 दिनों तक कोयल नदी के किनारे गांव का दौरा किया और करीब 1000 से अधिक लोगों को कैथोलिक समुदाय में भर्ती किया। प्रोटेस्टेंट कलीसिया में रह चुके इन ख्रिस्तियों को अधिक मजबूत करने के लिए फादर लेबन्स ने उस समय के दिघिया जिला में प्रचारकों की संख्या 10 से 40 तक बढ़ा दी। इस कार्य के लिए 2 दिन निर्धारित किए गए। पूरन प्रसाद और उत्तरी कोयल के उरांव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मिशन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें प्रोटेस्टेंट लोगों से परेशान किए जाने का डर था, किंतु वे कार्तिक मिशन को अपनाने वाले विशाल दल के अगुवे के समान बन गए थे। फादर लेबन्स ने अपनी दूरदर्शिता में महसूस किया कि यह पूरे उराव जाति को जीतने का एक नया एवं सुंदर अवसर है। पिछले दिनों उन्होंने विशाल तोरपा मिशन को छोटे छोटे मिशन स्टेशनों में बांटा था। अब तोरपा के उत्तर पश्चिम भाग के उराव भी आगे आने लगे थे। इस तरह उराओं के पहले दल के कार्तिक बनने के साथ फादर लेबन्स के तोरपा मिशन काल का समापन हो गया। अब उनके मिशन का केंद्र तोरपा नहीं बल्कि रांची हो गया था, क्योंकि वे रांची में रहने लगे थे जो उस समय लोहरदगा जिला की राजधानी थी। 1888 के जनवरी और फरवरी में रांची एवं तोरपा में अपनी यात्रा के दौरान फादर ग्रोसजी ने फादरों को बतलाया था कि जून में वे दूसरी यात्रा पर वापस आ सकते हैं। अपने कहे अनुसार 11 जून को फादर ग्रोसजी रांची पहुंचे। फादर लेबन्स उन दिनों फादर हेगनबेक एवं पूरन प्रसाद के साथ देशी ख्रिस्तियों से मिलने हेतु दौरे पर थे। 13 जून को फादर लेबन्स मनरेसा हाउस लौटे और अपने नए मिशन के बारे फादर ग्रोसजीन को बतलाया। कुछ दिनों के बाद 16 जून को मिशन सुपीरियर एवं फादर लेबन्स छटनागपुर के सभी मिशन स्टेशनों का दौरा करने निकले। वे दिघिया, तोरपा, बसिया, डोरमा, बंदगांव, चाईबासा आदि स्थानों पर गए। उनकी यात्रा सामान्य और व्यवहारिक यात्रा थी, जिसमें उन्होंने परिस्थितियों का अवलोकन किया, परखा तथा पूरे मिशन के विकास हेतु आवश्यक बातों पर गौर किया और इसके अनुसार भविष्य के लिए निर्णय भी लिया। जब फादर लेबन्स रांची में रहने लगे तो उनकी मदद की खोज करने वाले लोग दूर दूर से आने लगे। वहां स्कूल घर एवं प्रार्थनालय का भी निर्माण किया गया। फादर लेबन्स ने छटनागपुर मिशन के लिए अपनी भावी योजना के बारे बतलाया। वे प्रचारकों, स्कूल टीचर और पुरोहितों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल खोलना चाहते थे। उन्होंने स्कूल टीचर एवं बच्चों को रांची के छोटे स्कूल में भेजा, जिसका संचालन फादर मोटेट कर रहे थे। वहां उन्हें धर्म, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अंक गणित और संगीत आदि विषय पढ़ाए जाते थे। बच्चे जो बुलाहट में रुचि रखते थे उन्हें लैटिन भी पढ़ाया जाता था, किंतु फादर लेबन्स की अधिक चिंता प्रचारकों के लिए थी। मिशन के करीब सभी प्रचारक प्रोटेस्टेंट समुदाय से कार्तिक समुदाय में आए थे, जो अशिक्षित थे, बिना प्रशिक्षण और बिना तैयारी के थे। तोरपा में फादर लेबन्स उन्हें सिर्फ एक घंटे के मार्गदर्शन के बाद ईश्वर की आशीष देकर भेजते थे। इस तरह हम देखते हैं कि फादर लेबन्स के माध्यम से प्रभु ने किस तरह सभी लोगों को अपने झुंड में एकत्रित किया और छटनागपुर मिशन का विस्तार हुआ, जिसने यहाँ के लोगों में नवजीवन का संचार किया। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवन एवं छटनागपुर मिशन पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे थे। इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।
चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी, हे नाथ हे अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में। चाहत में प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक खुशियां किसी की मोहताज नहीं। लेखिका है दुर्गेश नंदिनी चौधरी। श्रोताओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6.3% लोग किसी न किसी रूप में बधिरता से पीड़ित हैं, जबकि देश में 1,00,000 से ज्यादा बच्चे प्रतिवर्ष बधिर पैदा होते हैं। इन बच्चों को समय पर सुनने की जांच न मिल पाने के कारण ये आवाज से वंचित रह जाते हैं। बधिरों में स्वस्थ जीवन, स्वाभिमान, गरिमा इत्यादि भावनाओं को बल मिल सके, इसलिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मूक बधिर दिवस मनाया जाता है। विश्व बधिर संघ ने वर्ष 1958 से विश्व बधिर दिवस की शुरुआत की, लेकिन वर्तमान में यह मूक बधिर दिवस सप्ताह के रूप में अधिक जाना जाता है। इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है। दिव्यांग लोगों को किसी की दया की जरूरत नहीं है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं, बल्कि समाज से हटकर कुछ अलग करने का जज्बा पैदा करता है। इसे लेकर जिंदगी को कोसने के बजाय उसके साथ जीने का सलीका सीखना चाहिए। बस जरूरत है उनके हुनर को निखारने के लिए उपयुक्त माहौल की। अगर माता पिता, परिवार और समाज का सही साथ मिले तो वे भी आसमान को छू सकते हैं, आत्मसम्मान और सामान्य जीवन जी सकते हैं और अपने जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए आदर्श बन जाते हैं। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं दुर्गेश नंदिनी चौधरी की लिखी नाटिका खुशियां किसी की मोहताज नहीं।
नहीं डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? जरूर जांच में कुछ कमी हुई है अमित, मशीन की गलती है, समझने की गलती हो सकती है। मेरी प्यारी सी बच्ची सुन नहीं सकती, भूल नहीं सकती, ये कैसे हो सकता है? अमित अमित कुछ बोलो ना, डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं ना? क्या हुआ, कुछ भूल नहीं रहे हो तुम भी? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहां मुझसे चूक हो गई, ये कैसी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अमित, क्या हो रहा है?
क्या सोच रही हो? अरे भाई, खुशी का पल है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई मीनू, हमारी खुशी ने खिताब जीता है, खिताब मिस डेफ एशिया, ये कोई मामूली बात नहीं है, होली का जश्न दोगुना हो गया है। मैं कहता था ना मीनल, ईश्वर की लीला न्यारी होती है, देखना हमारी बच्ची एक दिन कमाल करेगी। अरे कुछ बोलो भी, कहाँ खो गई तुम?
हाँ अमित, पुराने दौर में खो गई थी जब खुशी का जन्म हुआ था, और मैं तैयारी नहीं हो रही थी कि हमारी बच्ची कभी बोल नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी। सच स्वीकार करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, लेकिन सच इतना बड़ा हो जाता है और हम उसके आगे बौने हो जाते हैं अमित, हमें आखिरकार मानना ही पड़ा। खुशी की उम्र मात्र 3 वर्ष थी, याद है ना? बस उन्हीं पुरानी यादों में खो गई थी।
अरे मीनल, तुम भी क्या पुरानी बात आज के दिन सोच रही हो? अरे हमारी बिटिया निराली है, सबसे निराली, एकदम अलग। खुशी ने फेसबुक वॉल पर लिखा है, उसने लिखा है, मैंने भारत के लिए यह खिताब जीता। अरे पूरे देश को गर्व होगा हमारी बेटी पर, तुम्हारा बड़ा योगदान है मीनू, मुझे गर्व है तुम पर और अपनी बेटी पर।
हाँ अमित, सचमुच ईश्वर ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। एक बात मैं भी कहूंगी तुमसे कि खुशी को आगे बढ़ाने में हमेशा तुमने मेरा सहयोग किया, कभी भी रोक टोक नहीं लगाई, वो जो भी करना चाहती थी तुमने सदैव उसका मनोबल बढ़ाया। मुझसे सुबह बात हुई थी, उससे कह रही थी, माँ आप और पापा के बिना इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। देखो देखो ये मैसेज है, मैं पापा को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उसकी इच्छा है कि वो फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की मदद करे, चाहे इसके लिए उसे अपनी सुविधाएं ही क्यों न छूनी पड़े अमित।
अरे वाह, देखो कितनी अच्छी बात है कि खुशी इतनी बढ़िया पहल करना चाहती है।
हाँ।
देखो हम उसके साथ सदैव हैं, हमेशा हैं। मिनल चलो अब तैयारी करो, तैयारी करो जश्न की।
बिल्कुल बिल्कुल,
चलो चलो।
अरे अमित जी, बधाई हो भाई, खुशी ने खिताब जीत ही लिया। वाकई हमारी खुशी शुरू से ही होनहार रही है। इस जीत ने साबित कर दिया कि फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को दया की जरूरत नहीं है, बस उन्हें केवल खुद को साबित करने के लिए बराबर मौकों की दरकार है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। हमारी खुशी ने बेहतर मिसाल कायम की, एक अच्छा संदेश दिया समाज को। भाई मौका भी है, दस्तूर भी है। होली के मौके पर इतनी बड़ी सौगात, अब तो अपनी सोसाइटी में धमाल होना चाहिए। पार्टी शार्टी का आयोजन करो भाई।
अरे रे 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 रे, मुझे भी कोई कुछ बताएगा कि क्या खुशखबरी है भाई साहब। ये किस पार्टी शार्टी की बात कर रहे हैं? होली मिलन तो हमेशा होता है, इस बार क्या खास है हमें भी तो पता चले। साफ सफाई त्योहार की तैयारी में मौका ही नहीं मिला कि मीनल से मिलूं। अरे अब बताओ अभी मुझे, क्या बात है, दोनों बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे बताओ ना जल्दी।
भाभी भाभी भाभी, थोड़ी सांस तो लीजिए, एकदम फर्राटेदार गाड़ी चल पड़ी आपकी, बोलने का मौका तो दीजिए।
अरे बोलिए बोलिए, सॉरी 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 सॉरी।
देखिए, अपनी खुशी ने मिस डेफ एशिया का खिताब जीता है।
अच्छा,
देश का नाम रोशन कर दिया है। बस भाभी, उसी खुशी में शर्मा जी पार्टी शार्टी मांग रहे हैं।
अरे वाह भाई साहब वाह, हमारी बच्ची ने तो कमाल कर दिया जी, मैं तो वारी वारी जाऊं। अरे पुत्र पुत्र कहाँ है? अजी मैं तो पहले ही कहती थी ये बच्ची बड़ी सोनी है, सोनी समझदार है, होनहार है, देखना एक दिन बहुत नाम करेगी। हाय रब्बा, तेरा लख लख शुक्रिया भाई साहब। जश्न तो होगा और बहुत धूमधाम से होगा।
अरे बिल्कुल बिल्कुल होगा भाभी, बिल्कुल। आखिर हमारी बिटिया ने हमारा नाम जो ऊंचा किया है। अरे मीनल, देखो होली मिलन समारोह इस बार ऐसा करेंगे, बढ़िया पार्टी का आयोजन बड़ी होटल में रखेंगे।
सच? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों को भी इनवाइट करेंगे हम ही थम, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि आपकी कमियों के बीच असफलता नहीं आ सकती, क्योंकि खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं होती। हा? फिजिकली चैलेंज्ड लोग भी हर खुशी के हकदार हैं अमित।
प्यास सोच है तुम्हारी, वाह 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 मीनू, बिल्कुल बिल्कुल उन्हें बुलाएंगे हम। और हाँ, हमारे ऑफिस के जैन साहब का बेटा भी ऐसी ही कमी का शिकार है, उन्हें भी बिल्कुल बुलाएंगे हम।
ठीक कह रहे हो,
क्योंकि उन्हें अच्छा लगेगा और उत्साह से अपने बेटे को आगे बढ़ाने में जुट जाएंगे। क्या है ना मीनू, जब बच्चों में कुछ कमी आती है ना, तो पिता सदैव चिंतित रहते हैं, माँ परेशान रहती है, जैन साहब भी हमेशा परेशान रहते हैं।
अच्छा?
जब वो पार्टी में सबसे मिलेंगे तो उनकी हौसला अफजाई होगी।
बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमित। और हमारी खुशी तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना भी चाहती है। याद है ना, जब खुशी वर्ल्ड एफ टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंची थी तो कितना खुश थी, और मैं नर्वस हो रही थी, तो उसने मेरा हाथ दबाकर एहसास कराया था अमित कि घबराओ मत माँ, मुझ पर भरोसा रखो। वाकई हमारी बेटी बहुत होनहार समझदार है अमित, मुझे गर्व है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मुझे मालूम है कि ऐसे वक्त तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। देखो, हर छोटी बड़ी बात याद आ जाती है, होता है ऐसा। देखो मीनल, अब ये सोचो कि हमें फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए क्या करना है, क्योंकि हमारी बेटी भी यही चाहती है ना। देखो भाई, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। अभी तुम ही तो कह रही थी ना कि फिजिकली चैलेंज लोग भी, बच्चे भी, बड़े भी, सब हर खुशी के हकदार हैं। हाँ? और देखो, मैंने जो बात कही इससे अब तुम्हें हंसी आ ही गई।
बातें करना तो कोई आपसे सीखे, खुशी बिल्कुल आप पर गई है।
अच्छा।
खुशियाँ किसी की मोहताज नहीं। अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे संतोष जोशी, भवानी कौल, दुर्गेश नंदनी और सुधीर तेलंग। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।